उसके बाद अगला, जिसको मैं लफ्ज अच्छा ना बोल दूं, द मोस्ट रोमांटिक गजवा, हमरा उलसत। गजवे उहद के बाद मदीना पहुंचने के अगली सुबह दोबारा एक ऐलान हुआ, वापिस चलिए। आपको कोई कहे तो क्या कहते आप? 70 शहीद घर घर में, औरतें बेवा, बच्चे यतीम, सूरत निसा इतने नाजिल हो रही हैं। हर घर में प्रॉब्लम है, जो जख्मी है। एक देखिए, सारा दिन काम करें और दावत बड़ी अच्छी हो जाए, थकन नहीं होती, लेकिन मेहनत भी करें और रिजल्ट खराब है तो थकन ही नहीं उतरती। फतह का ना एक अपना जोश होता है, एक एनर्जी होती है। शिकस्त में ही बंदे को पता चलता है अल्लाह के लिए किया था या फतह के लिए किया था। लेकिन साहबा, इतने मॉरली टूटे होने के बावजूद अल्लाह के नबी ने कहा कि निकलो, क्या पता अबू सुफियान वापस आ जाए। और उधर अबू सुफियान साहब को भी यही ख्याल हुआ कि मैंने क्या किया, मैं तो मदीना पे हमला कर सकता था और कब्जा करता, चलो वापस जाते हैं। और साहबा ने किसी जगह चूंचरा नहीं की, लेकिन मक्की लश्कर डर के मारे टकराव से पहले वापस लौट गया। और साहबा के मुंह से क्या बात निकली? जब अबू नईम के हाथों पैगाम भिजवाया अबू सुफियान साहब ने, अरे वो बहुत नई फौज मक्का से आ गई है, नई कुमक है, यानी डराना चाहा, तो उनका जवाब क्या था? फजादत हुम ईमाना। अल्लाह कहते हमने उनको ईमान में बढ़ा दिया। क्या कहा उन्होंने? हसबुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। नतीजा क्या निकला? फयनकलबू बिनेमति मिनल्लाह। और क्या मिला? लम यमसस हमसू। आज सिर्फ इस एक आयत के, जो मैंने टुकड़े टुकड़े बोले ना, चार चीजें पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये मनहज है। अल्लाह पे नजरें लगाओ, दुश्मनों का डर छोड़ दो, रिसोर्सेज नहीं कोई बात नहीं, चल पड़ो, तुम्हें देखना अल्लाह इतना दुनिया का भी देख के नवाजेगा कि वो दुश्मन तो चले गए, मुसलमानों को वहां से इतना माले गनीमत मिला, खुशियां मनाते हुए मदीना वापस आ गए। मुझे तो लगता है कि ओहद की शिकस्त पे एक फाहा रख दिया कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा, जैसे बच्चा रोए ना चोट लगे तो माँ उसको टॉफी और कैंडी देती है, कुछ ऐसा ही कमर उल असद का वाक्य था। याद रखिए कि तारीख में सहाबा कराम का जो मुकाम है ना, लोग कहते हैं ये अजीब ही लोग थे, ये मौत से डरते ही नहीं, ये तो मौत की आंखों में आंखें डालकर देखते थे, खुश होते थे। वजह ये है कि नजरें अल्लाह पे थी ना, दश्त दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये आज का मुसलमान सोच भी नहीं सकता, दबे हुए पिसे हुए वहन के मारे हुए आज है मुसलमान। पता नहीं किन चंद नेक मुसलमानों की वजह से अल्लाह ताला ने अभी तक उम्मत मुस्लिमा पे इतनी रहमतें रखी हैं। बहरहाल अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं नबी को मदीना में आए, चौथा साल देख लीजिए तो 4 हिजरी के वाकयात। नंबर एक रजी का वाकया हुआ सफर के महीने में 4 हिजरी में, फिर बैरे माऊना का हादसा हुआ सफर के महीने में 4 हिजरी, फिर गजवा बनु नज़ीर हुआ रबीउल अव्वल 4 हिजरी में, फिर गजवा बदरे दोम शाबान 4 हिजरी में हुआ। कोई एक साल खाली नहीं दिखेगा आपको कि जिसमें ये महाज ना हो। नबी की पूरी जिंदगी जो थी ना, वो चैलेंजेस का शिकार थी, और लोग उनको सबसे ज्यादा स्माइली देखते थे, हंसते रिलैक्स्ड चिल मोड होता था नबी का। हमारे दिन में आता नबी पता नहीं कितने दुखी होंगे, बताओ क्या बताओ, देखो इनको क्या हो गया, हाय उधर हमला हो गया। साहबा कहते हैं हम घबराए हुए आते थे, परेशान होते थे, और नबी को देखते, उनके चेहरे के स्माइल और रिलैक्सेशन को देखते तो हमारी थकन उतर जाती। लीडर जैसे होने चाहिए। आप बच्चों की माएं हैं, बाप हैं, जो घर वाले बड़े, खुदा के लिए दीन के नाम पे उनको रोती शक्लें मत दिखाएं। सैड, दुखी, हाय ये हो गया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, पाकिस्तान खत्म हो गया, फलां खत्म, मत बताइए। ये नेगेटिव पेरेंटिंग छोड़ दीजिए, आप तो मोरल बुलंद करें, नबी से सीखे तो सही कैसे स्माइल देते थे। साहबी को जरा दुखी देखते थे आपका दिल पसीज जाता था, क्या बात है मेरे प्यारे, क्या हुआ, फिर हंसाते थे, स्माइल देते थे, प्यार देते थे, आज की जुबान में कह दी इमोजीज भेजते थे, दिल खुश करते थे, हक दे देते थे। आज कोई दीनदार दिल की तस्वीर भेज दे, कहते अस्तगफिरुल्लाह, दिल दिल वो तो फिल्मों में देते हैं। बहरहाल हमारा दीनदार का भी कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब है, ये भी एक जुमला लिख लें। देखिए जो हमने दीन को, दीनदारों को एक नटशेल में बंद करके छुपा दिया है ना, खास घटक, उनको देखकर लोग सहम जाए, गूज वाम हो जाए, उनको देखकर औरतें भी सरों पे दुपट्टे लेने शुरू कर दें, और वो ऐसे हों कि जिनको देख के घर में सांप सूझ जाए, ये दीन नहीं है। सॉरी टू से दैट, नॉर्मल रहिए, रूम टेम्परेचर अच्छा होता है। बहुत कोल्ड और बहुत हॉट में भी बंदा बेचैन है। और मैंने एक जुमले की डेफिनेशन बनाई हुई है, दीनदार वो है जिसकी मौजूदगी में दूसरे लोग अनकंफर्टेबल फील ना करें। कंफर्टेबल रहे, हमारे नबी की जिंदगी बहुत कंफर्टेबल थी। और याद रखिए, जरा सा नरम गोशा, जरा सा दिलों में नरम गोशा आना चाहिए। दीन पढ़ने के बाद दूसरों के लिए भी, घर वालों के लिए भी नरम गोशा। अपनी कमी महसूस करें ना, 12 साल होने तक हमने बच्चे को वो दीन की नमाज की समझ ही नहीं दी। बच्ची को, 5 साल की बच्ची आपकी नंगी टांगे पे फिरती है, स्लीवलेस पहनती है, आप उस 12-14 साल की लड़की को कैसे राबिया बसरी की मिसालें देते हैं या हजरत फातिमा की देते हैं? कसूर पेरेंट्स का है। तो कंफर्टेबल होना वो नहीं है कि सभी आपसे खुश हैं। सभी खुश हैं तो वो तो कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे, आपसे सब कभी खुश नहीं होंगे। और उनकी केयर छोड़ दें, अल्लाह रसूल और अल्लाह वाले, दैट्स इट। चलिए आगे देखिए कि 5 खिचड़ी के वाक्यात। अब 4 साल हमारे पूरे हो गए, 5 खिचड़ी में क्या हुआ? सबसे पहली बड़ी चीज गजवे खंदक, जिसको गजवे अहजाब भी कहते हैं, शवाल के महीने में हुई थी। सब मिलकर आओ मुसलमानों को खत्म करें, तुम भी खा लो कुछ, एक हिस्सा तुम ले लेना, तुम दूसरा ले लेना, वो ले लेना। अल्लाह के नबी की जो हदीस की बात है वही है, कितने कबाइल ने मिलकर मुसलमानों पर हमले का फैसला किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमानों को शाम, फारस और यमन की फतह की खुशखबरियां। और आपको पता है कि फतह की खुशखबरियां कब दी गई? जब पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। और मुनाफिकीन ने मजाक उड़ाया कि आज इतना खौफ है कि कजाए हाजत के लिए नहीं जा सकते, और ख्वाब कैसरो किसरा के देख रहे हैं। यस, हाई विजन, अल्लाह के नबी जैसी लीडरशिप आ जा जाए और क्या चाहिए। एक आम सहाबी जिनकी अगर ये बात ना किताबों में लिखी होती तो आज मैं और आप उनका नाम भी ना जानते, सलमान फारसी। उनके मशवरे पे खंदक खोदने का काम किया गया, अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद क्या हुआ? बनी कुरैजा की मुसलमानों से गद्दारी, इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में। 1 महीने के मुहासरे के बाद जंग खत्म हुई। अल्लाह ताला ने मुशरिकों पर आंधी और फरिश्तों का लश्कर भेज दिया, और इसकी डिटेल्स मैं आप सबको दावत दूंगी, गजवा खंदक अगर पढ़ना है तो सूरह अहज़ाब 22वें पारे में शुरू होके 23वें में पूरी होती है। दो लफ्ज लिख लें, आज वेस्ट गैर मुस्लिम है ना, उनकी आंखों में दो चीजें बड़ी चुभती है, वॉर्स ऑफ द प्रॉफिट एंड वाइव्स ऑफ द प्रॉफिट्स। दोनों का जवाब इस सूरत में, पूरे कॉन्फिडेंस से इस सूरत को समझें और फिर देखिए आपको अल्लाह कितने खूबसूरत जवाब सिखाता है दूसरों के मुंह से निकली हुई बातों के। उसके बाद अगला बड़ा मामला गजवा बनू कुरैजा का, गद्दारी की। अल्लाह के नबी कभी गदर बर्दाश्त नहीं करते थे। यहूद का वो कबीला जो मदीना में था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और साथियों के खंदक पे होने की सूरत में पीछे से कुछ धोखेबाजियां की। साद बिन माजिस के हीरो बने, जीकात 5 हिजरी में ये गजवा हुआ था। मुसलमानों का बनू कुरैजा के अतराफ 25 रोज तक मुहासरा रहा। कितने करजियस लीडर थे अल्लाह के नबी, अल्लाह जैसे ही हमें बना दे। साद बिन माज के हाथों इनका फैसला करवाया गया, और अल्लाह के नबी की खुशखबरी कि साद का जो फैसला है वो अर्श पे रब का फैसला, अल्लाह अकबर। इसको कहते हैं सर्टिफिकेशन। अल्लाह ने सर्टिफाइड कर दिया नबी की जुबान से कि साद ने जो फैसला किया ये बिल्कुल ठीक किया है, कि इनकी औरतों और बच्चों को कैदी और गुलाम, और मर्दों को जो तहे तेग। कोई एतराज करता है तो करता रहे, उसकी मर्जी, रब पे एतराज करने वालों से अल्लाह खुद ही निबट लेता है। बहरहाल फिर सन 6 हिजरी आता है, इसके वाक्यात में गजवा बनू लहयान रबीउल अव्वल सन 6 हिजरी में हुआ। कबीले का नाम है बनू लहयान। उनसे रजी के शहदा का बदला लेने का इरादा फरमाया, और साथी जानते हैं रजी पे क्या हुआ था? 70 हुफाज़े कुराम धोखे से शहीद कर दिए गए। लेकिन देखिए अल्लाह के नबी ऐसे खड़े हो जाते थे, आ जाओ कौन है मेरे सामने, और दुश्मन भाग जाते थे। आपकी आमद की खबर सुनकर दुश्मन भाग निकले, उनके अंदर जुरत ही कहाँ थी। और याद रखिए, तौहीद आपको दलेर बनाती है, कुफर आपको भीगी बिल्ली बना देता है। फिर उसके बाद गजवा मुरैसी, दूसरा इसका नाम है गजवा बनू मुस्तलक। एक ही गजवा, बेसिकली कबीले का नाम था जिसके साथ हुई, बनी मुस्तलक था, और जगह जो थी वो मुरैसी नाम का एक कुआं था। आपको इस गजवे का नाम आते दिल में क्या आता है? तो सुनिए, इस गजवे के दौरान दो बड़े ही तकलीफ दे किस्म के वाक्यात हुए। इतने तकलीफ दे कि जिसको आप कह सकते हैं इमोशनली नबी सल्लम को ब्लैकमेल किया गया। पहला हादसा इसमें क्या था? चश्मे मुरैसी से पानी लेने के दौरान मुहाजरीन और अंसार में झगड़ा शुरू करा दिया। कॉन्स्परेसीज थी, साजिश थी यहूद की कि ये इतने प्यार से क्यों रहते हैं मुसलमान। पहले तो ये कितने मजे से लड़ते थे, औस और खजरज और जंगे बुआस, अच्छी खासी मतलब यूनिटी और मोहब्बत ही, और उसको झगड़े में ऐसे बदल दिया सहाबा को पता ही नहीं चल सका। और वॉर वॉर जंग जंग की बातें शुरू हो गई। हरा नाम की जगह थी, अल्लाह के नबी तक मैसेज किया, आप फौरन वहां गए। फिर वहां जाकर आपने फिर जो दिलसोज बात की, लीडर्स का काम ही है टूटे दिलों को जोड़े, आपने अपनी हिकमत से झगड़ा बढ़ने से रोक लिया। आपने कहा कि तुम्हें क्या हो गया, और सहाबा को ऐसे लगा कि जैसे होश में आ गए। और इसी मौके पे अब्दुल्ला बिन उबई ने वो हतकमेज अल्फाज बोले थे कि मदीना जाकर इज्जत वाला जिल्लत वाले को बाहर निकाल देगा। इशारा उसका जो था वो आप सब समझते हैं, मैं तो नहीं कुछ कहना चाहूंगी। अल्लाह ने यही जुमला उसके बेटे के जुबान पे, जो मुसलमान थे, अब्दुल्ला ही उनका नाम था, उन्होंने कहा अब्बा आप पहले अपना जुमला वापस लें, क्योंकि अल्लाह के नबी इज्जत वाले और जिल्लत उसके लिए जिसके दिल में सच्चा ईमान नहीं है। और जब नबी सल्लम के सामने मामला पेश हुआ तो मुकर गया, कहता तो मैंने तो नहीं कहा। जैद बिन अरकम नाम के प्यारे सहाबी, बच्चे थे अभी, लोग बच्चों को ऐसे ही डाल दे, छोटी उम्र है इनको क्या अकल है। जैद बिन अरकम ने अल्लाह के नबी को इस बात की खबर दी जाके, और ये मुकर गया। और जब मदीना वापस आया तो अपने ही बेटे ने रास्ता रोक लिया, और बिल आखिर फिर अल्लाह के नबी की सिफारिश पे जाने दिया। इसका तذکرہ कुरान में किधर है? सूरत मुनाफिकून। कुरान की तफसीर और सीरत साथ साथ, एक हाथ में कुरान पकड़ ले, एक में सीरा पकड़ ले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको फहम देगा। और इधर उधर की बातें भी ना सुने, सिर्फ इसको रिलेट करके कुरान को सुन ले। तो ये वाक्या था पहला। बंदा रो पड़ता है जो बातें उस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक की। चलिए अब बताइए दूसरा हादसा क्या होगा। इन्नल्लज़ीना जाओ बिलिफ्क वाकेफ्क, हज़रत आयशा पे तोहमत लगाई। अब्दुल्ला बिन उबई ने सूरत नूर की आयतें उतरी, और वो मासूम सी फूलों जैसी पाक आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहा के, जिनकी अपनी लौंडी बरीरा नाम की गवाही देती है, जब पूछा गया कि घर की लौंडियों को तो ज्यादा ही पता होता है ना कि औरतें कैसी हैं, तो है बरीरा आयशा कैसी है, तो कहने लगी वो तो इतनी मासूम और भोली है, आटा गूंद के वहीं छोड़ जाती है कि बकरी आती है तो आटा खा जाती है। यानी वो इतनी अल्लड़ सी भोली भाली बच्ची है, मोमिनातिन गाफिलातिन है, वो ऐसा कभी और गंदा फेल कर सकती है? और औरत होने के नाते आप और मैं सब जानते हैं शौहर के साथ औरत का क्या ताल्लुक होता है, कितनी सेंटिमेंटल होती है। और अल्लाह के नबी जिनका दिल आयशा की मोहब्बत में था, 1 महीना उनके लिए वो कैसा रहा होगा, इमेजिन तो कीजिए। ये सुनने के लायक है, सही बुखारी में ये वाकया पड़ी है, और हर साल दौरे कुरान और तफसीर की क्लासेस में ही नहीं आए तो वह सूरत नूर के दूसरे रुकू है, इसको कोशिश की जाती है समझने की। चलिए उसके बाद है अगला उमरे हुदैबिया। जी का 6 हिजरी, हम 6 हिजरी तक पहुंच चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लम को अल्लाह ने ख्वाब दिखाया कि आप अपने साथियों के साथ उमरा करें। 6 साल की जुदाई थी, बहरहाल आप मदीना वाले तो हर महीने में एक बार तो चले ही जाते होंगे मक्का। मेरा गुमान है अगर मैं मदीना रहती हूँ तो मैं एक दफा महीने में जरूर जाऊँ, ऐसे ही है ना, डिपेंड करता है ना। सहाबा तरस गए थे, बुखार होने लगे थे मक्का से मदीना आने पे। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह ने मुझे ख्वाब में दिखाया है कि हम उमरा कर रहे हैं। 1400 सहाबा फौरन तैयार हो गए, ना उस वक्त पैकेजेस के गम थे, ना होटलों के थे, ना खर्चा था, ना पानी था, ना कुछ था। सोचते कितने हैं और आ कितने पाते हैं, ये हर दौर में होता है। नसीब की बातें होती हैं और अल्लाह नियतों के ऊपर अजर देने को है। हजरत उस्मान को सफीर बनाकर नबी सल्लम ने भेजा और बैत रिजवान हुई। लकद रदी अल्लाह अनिल मोमिनीन। सूरह फतह की तफसीर सुन ले आप, बस इन डेप्थ हमने शायद 1 साल में की है पूरी। और उसके बाद फिर एक तारीख साज मुआहदा सुलह हुदैबिया के नाम से मारूफ हुआ। 10 शर्तें थी, हम बचपन से पढ़ते आए हैं क्लासों में, कभी नहीं थी समझ आई, याद ही नहीं थी होती, मुझे तो याद ही नहीं थी होती। इतनी मुश्किल लगती थी अपनी इस्लामियात की किताब, अल्लाह की पनाह। उन शरायत में वन साइडेड शर्तों में एक शर्त क्या थी, अल्लाह के नबी सल्लम साथियों समेत वापस जाएं और अगले साल आकर उम्रा कर दें। आप में से किसी को अगर यहाँ से वापस भेज दिया जाए नॉर्वे, अमेरिका, कनाडा, जहाँ जहाँ से भी आए हैं, जर्मनी, तो हमें आप कभी जिंदगी में माफ करेंगे? और आइंदा अगली दफा हमारे साथ आएंगे ग्रुप में आप? लेकिन सहाबा ने उस दिन ये साबित किया, एक जुमला लिख ले नए लोगों के लिए, पिछले सेशन में भी बोला है, इतात का अजर इबादत के अजर से ज्यादा होता है। बात मानते थे सहाबा, हम भी बातों पे जोर देते, हमारी तस्बीह 33 से 100 और 100 से 500 दानों की हो जाती है। फिर हम और नेक होते तो हमारी तस्बीह 1,000 दाने की हो जाती है। 5 से 7 नमाजें हैं माशाल्लाह, इतात नहीं है इल्ला माशाल्लाह। अल्लाह हमें अपने नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाला बना दे। इसी में एक शिक थी कि फ्री कैद में 10 साल के लिए जंग नहीं होगी, और कुरान पाक में इस सुलह को फतेह मुबीन करार दिया गया। कुरान क्या कहता है, इन्ना फतहना लक फतह मुबीना। ए नबी, हमने आपको खुली फतह अता कर दी। सूरह फतह का शुरू है और हजरत उमर जैसा शख्स परेशान है कि ये फतह, एकदम हार के जा रहे हैं, शिकस्त खा रहे हैं। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं, उमर उमर सबर, आपको नहीं अभी वो बात पता जो मुझे पता है। सिर्फ सुलह हुदैबिया आप माएँ सीख लें, 10 शर्तें, मैं कह सकती हूँ आपको 80% अपने बच्चों के साथ डील करना आ जाएगा। मैं आपको साबित कर सकती हूँ सुलह हुदैबिया की 10 शर्तें, उसको अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर लें। आपके फैमिली के ये जो आयली कवानीन और आयली मामलात, फैमिली इश्यूज हैं, ये 80% सॉल्व होंगे। मेरे तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 100+% मेरे ज़िंदगी के मैटर्स सीरत के साथ ही चले और चल रहे हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे। क्यों, हमारे अंदर कोई हिकमत नहीं होती? हम हक पे होते हुए कहते हैं, हक पे हूँ, अपना हक लूंगी। अल्लाह का नबी कह रहा है, हक पे रहते हुए झगड़े की वजह से छोड़ दो, हुदैबिया से सीख लो कि तुम हक पे हो फिर भी अगले को बड़ा बना दो। अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुम्हें दूसरा तो वो दे ही नहीं सकता। और फिर सुलह का जो असर हुआ, अल्लाह अकबर, जंग नहीं हुई तो अब छुट्टी पे चले जाए? नो, आम अरबों से मिलने और उन्हें दावत देने का मौका मिला। या एक जुमला लिख लें, मोमिन दुनिया में ऑन जॉब है, ऑन जॉब, क्योंकि ये दुनिया काम की जगह और वो दुनिया आराम की जगह। नम कनौ मतिल अरूस, कब्र में सुनेंगे इंशाल्लाह, सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। काम करके आए हो ना, अब आराम करो। और अल्लाह रहम करे, जो हम आराम कर रहे हैं इस दुनिया में कंफर्ट जोन में बैठे, तो पता नहीं वहां जाके क्या होना है। दो दुआएं अपने लिए याद रखें आप, कि अल्लाह मौत के वक्त या अयतुहन नफ्सुल मुतमईना की पुकार सुनाना, इतना सुकून हो मेरी मौत के वक्त, मेरी कब्र में से खुशबू आए, मेरी डेड बॉडी को लोग देखें तो वो सारी जो मोमिन की निशानी है ना, वो सारी की सारी दिखे। और दूसरी ये दुआ कीजिए कि अल्लाह कब्र में ये आवाज़ सुनाना, नम का नाम मतलब रोज, फिर आप कामयाब है। फमन जोखानी नारी बहुत खिलल जुमना फ़कद फास वमल हयात दुनिया इल्ला मताल गुरूर। ये भी मांगिएगा, अल्लाह ये मच्छरों से भरी दुनिया, ये मुर्दा बकरी के सींग जिसमें कीड़े पड़े हैं, इस दुनिया को मेरे दिल से निकाल दे। और दिल से निकल गई तो ये मैं आपको वादा देती हूँ, आपके हाथों से फिर भी नहीं निकलनी। डरिए नहीं कि फिर आप कंगाल हो जाएंगे, फिर आपकी ज़िंदगी बोरिंग हो जाएगी, आपका इसको फाने हो, दुनिया से ज़्यादा होगा, लेकिन दिल से पहले निकालें, फिर देखिए क्या होता है। जान निकल जाए आपकी, एक डॉलर अपनी ज़ात पे लगाते हुए, चीखें निकल जाए आपकी, एक रियाल अपनी जान पे लगाते हुए, फिर देखिए क्या होता है। क्या असर निकला, बकसरत लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। और जो नबी ने काम लिया एज अ लीडर, बादशाहों और उमरा के नाम खतूत भेज दें, क्योंकि आपको उधर से सुकून हुआ कि अब जंग नहीं है। आपकी तो ये एनर्जी सारी ड्रेन कर ली थी 6 साल में ये जंगों ने। ये तो अल्लाह ने आपको एनर्जी दी हुई थी, आप थकते नहीं थे, लेकिन कोई कसर तो नहीं छुटी। हर जंग में तकलीफ है, अब जंग नहीं होगी, आप कह रहे लाओ भाई खत लिखो, उसको लिखो, मुकोकस को लिखो, उसको लिखो, उसको लिखो, इसको लिखो। और ये चीज़ बताती है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने वाकई एक लीडर होने का हक अदा किया, और ये कारनामा आपकी गैर मामूली शुजाअत को जाहिर करता है। किसी और नबी ने गैर कौमों के बादशाहों की तरफ दावत के खत नहीं लिखे, क्योंकि अल्लाह के नबी के जरिए तमाम हुज्जत होना था। वो अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक का वादा पूरा हो रहा था, और अल्लाह ने काम लिया। आम दावत की ये तहरीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से शुरू हुई। देखिए जो जिस लेवल पे है ना, उसको वहां दावत देनी पड़ेगी। शुक्र करें आप में बादशाह वजीर और सदर नहीं है, बड़ी सख्त हिसाबदेही थी। नतीजा क्या निकला? कुछ बादशाहों ने इस दावत को कबूल किया और कुछ ने खुल कर मुखालफत की। कुछ ने कबूलियत का हक अदा किया और कुछ ने मुखालफत का। मसलन निजाशी शाह हफशा के नाम खत लिखा, मुकाकस शाह स्कंदरिया और मिस्र के नाम खत लिखा, खुसरो परवेज जो शाह फारस थे उनके नाम खत लिखा, फिर कैसरे शाह रोम के नाम खत लिखा। और ये टाइटल्स थे उस दौर में, जैसे आजकल है ना सदर, वजीर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो उस दौर में कहीं मुकोकस था, कहीं कैसर था, कहीं किसरा था। इसी तरह से हारिस बिन अबू शिमर गस्सानी के नाम खत लिखा, हौजा बिन अली साहिब यमामा के नाम खत लिखा, फिर मुंजर बिन सावा हाकमे बहरेन था उसके नाम खत लिखा, शाह उमान जैफर और उसके भाई के नाम खत लिखा, और इसी तरह से अमीरे बुसरा उनके नाम खत लिखा। क्या पता चला अगर अल्लाह के नबी आज होते। मैं सोच के खुश हो रही हूँ, थोड़ा नक्शा तो आपको भी आता ही है, नाम भी आते हैं मुल्कों के, किस किस के नाम खत जाता। मोहब्बत से कह देती हूँ ट्रंप को तो ज़रूरी लिखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह हमें ऐसे बना दे। उसके बाद ही सन 7 हिजरी पे आ गए हैं, बस 3 साल रह गए हैं आपकी जिंदगी के खूबसूरत सालों के। इसमें नंबर एक गजवे गाबा, जिसका दूसरा नाम गजवे ज़ी क़िरद, बंदरों वाली जंग, मुहर्रम 7 हिजरी में ये हुआ। ये गजवा आपकी खैबर रवानगी से सिर्फ 3 दिन पहले पेश आया। देखिए कामों में काम, प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट चल रहे हैं नबी की जिंदगी में। यही होगा हमारे साथ भी इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर वो गजवा हुआ जिसके बाद तो दौलत के अंबार लग गए मुसलमानों के पास, गजवे खैबर। मुहर्रम 7 हिजरी में ये गजवा हुआ। अब यहाँ जो फैसिनेटिंग बातें हैं ना, यानी असल में मुझे सीरत से प्यार बहुत है, आपको शायद अंदाजा भी हो रहा होगा। मैं ऐसे इंजॉय कर रही हूँ जैसे आप शौशलिक और राइस इंजॉय करते हैं, या दही बल्ले, गोलगप्पे, भाजी, पूरी भाजी, और भी कोई कह दे कढ़ी चावल। हर कल्चर का एक टेस्ट है ना। मेरा दिल करे आप सब चले जाए और मुझे ना कुछ छेड़े, मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ। गजवे खैबर। अच्छा अब जरा सा पहले मेरे साथ जहनी तौर पे रहें, फिर मैं आपको खैबर की जंग तक लेके चलती हूँ। कभी कभी कुछ ऐसी नेकियाँ होती हैं जिसको करना हमें मुश्किल लगता है, और वो कौन सी थी? दुश्मनों के वार जोन में जाकर उमरा करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 1400 लोग तैयार हुए थे, उमरा तो नहीं हुआ, वापस आ गए। उसके बाद अगले साल सिर्फ इन्हीं को इजाजत मिली खैबर जाने की। और खैबर की तरफ जाने के लिए मैं एक सिर्फ स्लैंग सा वर्ड बोलूं, मुहावरे हमारे कल्चर में, राल टपक रही थी लोगों की, मुनाफिकों की ज्यादा ही टपक रही थी, क्योंकि खैबर क्या है? फर्टाइल लैंड्स। और यहूद उस वक्त तक ऑलमोस्ट कंकर हो चुके थे। अल्लाह के नबी ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बनाकर भेजा लीडर, और उनको भी कह दिया था कि अली रजी अल्लाह अन्हु पहले जाकर उनको इस्लाम की दावत देना, और तेरी दावत से अगर एक शख्स हिदायत पे आ जाए तो तेरे हक में 100 सुल ऊँटों के मिलने से ज्यादा फायदे की चीज होगी। यहूद को बिल्कुल नहीं खबर थी कि हो क्या रहा है, और अल्लाह के नबी ने हजरत अली के हाथ में झंडा दिया, और हजरत अली को अल्लाह ने वो इज्जत दिलाई, फातेह खैबर बना दिया। यहूद के तमाम कलेे फतह कर लिए गए। इसी तरह से 93 यहूद मारे गए और खैबर की फतह के बाद मुसलमान मुआशी तौर पर मजबूत हो गए। ये वो वक्त है कि जब नबी की बीवियों ने कहा कि नबी अब तो हमारे घर चूल्हा जल जाए, दो दो महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। और खैबर की ज़मीनें ऐसे थी जैसे आप कह लें टकसाल, जरखेज ज़मीनें थी। और लन तनालुल बिर्रा की आयत सुनकर हजरत उमर ने क्या कहा था, मुझे तो अपनी खैबर की ज़मीन पसंद है, कच्चा असल रोक लो और उसका नफा आम कर दो। अल्लाह ने वो काम ले लिया। यहाँ जो बात मैं आपको कहने लगी थी शुरू में वो अभी समझ ले, जो नेकी मुश्किल लग रही हो उसको ना छोड़े, वो आगे से आपको खैबर की सारी फतूहात दिलाती है। अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे वो लोग जो हमारे साथ पिछले में नहीं गए थे, हम अपनी पसंद की नेकी कर लेते हैं, हम अकल बड़ी इस्तेमाल करते हैं, साहब अकल नहीं इस्तेमाल करते थे, बस इतना कह देती हूँ। और अगली जंग थी भी गजवा ज़ात-उर-रिका, किसको कहते हैं, नाम सुना ना कभी, जमादिल-उला 7 हिजरी में ये जंग हुई थी। ज़ात कहते वाली, रिका कहते पट्टी, बैंडेज, चीथड़ों वाली जंग। पैदल चलने की वजह से मुसलमानों के कदम जख्मी हो गए, जिसकी वजह से चीथड़े बांधे थे, लपेटे, और अरबी में चीथड़ों को रिका कहते हैं। हम इस रास्ते में कहाँ चले, किसी ने कहा ना कि इन्हीं पत्थरों पर चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। याद रखिए ये है जिद्दोजहदीन की, ये सीरत आपको मुझे सिखाती है। प्यारे नबी ने ये किया, आपको सहाबा की लंबी लंबी नमाजों का तذکرہ कहीं नहीं मिलेगा, तस्बीहों का, वजीफों का, वो तो करते थे तभी तो ये एनर्जी थी, वो तो फ्यूल था। देखिए हम नमाज पढ़ते हैं ना, एनर्जी मिलती है उस नमाज के बाद, फफिरु इलल्लाह, फस्तबिकुल खैरात, अस्साबिकूना अल्अव्वलून, नेकियों में भागेंगे, ये नहीं आज हमारे पास। हम नमाजें पढ़ पढ़ के क्या करते हैं, मिसाल दो, फायदे की खातिर, शायद किसी को इससे ही फायदा हो और मुझे भी फायदा हो जाए। खाना खाए ना, खाना खाते ही सो जाए, उठते हैं तो क्या होता है, और खाए भी बिरयानी, साथ उस पे कचूमर, चाट मसाला, साथ थोड़ी खट्टी अचार, तो फिर उठ के कहते पता नहीं सी ना क्यों चल रहा, भाई आपसे भी ज्यादा कोई भोला होगा। फिर जब हमारा स्टमिक अपसेट होता है फिर कहते कुछ है खाने को मैं खा लूं, सोडा बोतल, यानी हम खाना हजम करने के लिए फिर कुछ खाते हैं, हालांकि एक दिन का फाका कर ले सब ठीक हो जाएगा। अच्छा खाया तो सो गए, हजम ही नहीं होना। वैसे हमारे देसियों का पता नहीं कैसे होता है, हम कहते नहीं वो नींद में भी हमारा दिल तो चल रहा था और वो इतने ऑर्गन तो चलते हैं। खैर अच्छा आपने खाना खाया, खूब वॉक की, इधर गए उधर गए, 3-4 घंटे बाद भूख लगती है, ना खाए तो भूख नहीं लगती, हैवी खाना खाकर बैठ रहे तो अगला खाना खाने को दिल ही नहीं करता। यही हाल हमारी इबादत का है। आप नमाज पढ़ते हैं ना आपको ईमान मिलता है, कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशियून। अब वो नमाज पढ़ी तो अंदर एनर्जी गई, अब ये एनर्जी आपसे क्या चाहती है, फबेर होना, भागो दौड़ो। जो ही आप अल्लाह के हुक्मों पे अमल करके भागते हैं ना, तो वो फिर वो जैसे गाड़ी में से पेट्रोल कम होने लगता है ना, टैंकी खाली होने लगती है, तो गुस्सा ही आने लग जाता है पेट्रोल डालें। और मसलन व्हील्स जो हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं आज, वो आपको बताने लग जाती हैं कि आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, आपकी गाड़ी का चार्जर चाहिए, है ना। ये नमाज रोजे चार्जिंग पॉइंट्स हैं, चार्जर्स हैं आपके। आप इस फोन को, ये देखिए ये मेरा फोन डेड हो गया, अब चार्जर पे रखती तो पूरा ही रहता, आप और मैं चार्ज रहे। चार्जर कौन सा है, कुरान सुन्नत, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कहीं चीथड़े भी बांध के पाँव पे दीन का काम करना पड़े तो करो, पट्टियां बांधो करो, ताकि इस दीन के पौधे पे बहार रहे। और उसके बाद अगला काम, 7 हिजरी का ज़ीकात में उमरा कजा, पिछले साल रोक दिया, जाओ ईगो अना का मसला, हाँ ठीक है अगले साल आना, सिर्फ 3 दिन के लिए उमरा कर लेना और वापस चले जाना। मक्का वाले खुद पहाड़ों पे निकल गए, इतना खौफ था। और अल्लाह के नबी आए, कोई एग्रेशन नहीं, कोई जारहियत नहीं कि मौका मिला है पकड़ लो कब्जा कर लो। कभी नबी का मिजाज तो मुसलमान समझे, कितने सोफिस्टिकेटेड थे, कितने डिसेंट, कितने मुहसब थे। आज हम गैरों की मस्जिदों पे कब्जा करके बैठ जाते हैं जी, मस्जिद बना ली हमने, प्लॉट लिया, मस्जिद बना ली। वो मस्जिद नहीं, वो मस्जिद दरार होगी। लोगों को अपनी डीलिंग से बताइए कि आप मुसलमान हैं। बहरहाल, इसके बाद 8 हिजरी के वाक़ात, यहाँ से बाखरी दौर शुरू हो रहा है नबी सल्लम की मदनी दौर का। इसमें मार्का मुता था, जमादी अव्वल 8 हिजरी में हुआ। 3,000 जानबाजों के सामने 2 लाख का लश्कर, जिसका मैथ अच्छा है, रेशियो प्रोपोर्शन निकाले, 2 लाख वर्सेस 3,000। एक बंदे के सामने कितने कुफार थे, फिर भी निकाल नहीं, जाओ छुट्टी, नहीं, मुसलमान है थोड़े, अभी हालात अच्छे नहीं, जरा और हो जाओगे तो आना। हम रिसोर्सेज को रोते रह जाते, अल्लाह ताला ने काम करने वालों से करा लिया। जैद बिन हारिसा को सिपह सलार बनाया गया। हजरत जाफर और अब्दुल्ला बिन रवाहा इस जंग में शहीद हो गए, और इसके बाद झंडा खालिद बिन वलीद के हाथ में आ गया। खालिद बिन वलीद ने लश्कर की तरतीब बदली, बहुत बड़े खिलाड़ी थे इस मैदान के, अब तो उनको मौका मिल रहा था कि वो इस्लाम की तरफ से लड़े। बहरहाल, दुश्मन समझा कि मुसलमानों के पास मजीद मदद आई है, उस पर रोब छा गया, और 7 दिन की झड़प में मुसलमानों का पलड़ा भारी हो गया, और इस तरह से नामुमकिन चीज मुमकिन में बदल गई। और उसके बाद है जी फतह मक्का। यहाँ से बेसिकली दूसरा ही दौर है, रमजान 8 हिजरी में ये हुआ। कुरैश की तरफ से मुआहदा हुदैबिया की खिलाफ वर्जी फतह मक्का का सबब बना। इसको कहते हैं इंग्लिश में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कुरान क्या कहता है, आसान तक रहो शैन वो खैर लकुम, और उर्दू में क्या कहते हैं कि शर में खैर है। अगर सुलह उदैबिया ना होती और अल्लाह के नबी वन साइडेडली कबूल ना करते तो मक्का फतह नहीं होना था। तो कभी आज आप दबते हैं ना, थोड़ा सा दब जाए, 2-2.5 साल बाद आप रानी होंगी, मलका होंगी, थोड़ी देर बच्चियों को भी दबना सिखाइए। ये जब घर नहीं बस रहे ना, शुरू में हम प्लस माइनस पे आ जाते हैं। बहरहाल, कुरैश को अपनी गलती का एहसास हुआ, नबी सल्लम ने उनकी बात ना मानी, यानी उन्होंने कहा हमारे साथ मान जाइए, सुलह कर ले, नहीं की। और अबू सुफियान रजी अल्लाह अनहु को नबी सल्लम से मिलने के लिए मदीना भेजा गया, लेकिन अल्लाह के नबी ने उनकी बात ना मानी। और उस वक्त नबी के क्या थे, सुसर थे, दामाद होते हुए भी अल्लाह के नबी को ये नहीं था कि मेरा ससुर मुझसे नाराज होगा। अल्लाह के नबी ने गजबे की तैयारी शुरू कर दी, सहाबा को भी तैयारी और इस खबर को छुपाए रहने का हुक्म दिया। और खातिब बिन बलता का किस्सा आप पार्ट 1 में सुन चुके हैं माशाल्लाह। आप मक्के से 10,000 का लश्कर लेकर निकले। अबवा के मुकाम पर अबू सुफियान दोबारा आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। इस मौके पर वो इस्लाम ले आए और अल्लाह के नबी ने उनको एजाज दिया, ऑनर दिया। ये भी एक स्ट्रेटेजी सीखी है, लोगों को इज्जत देना सीखे। जिसको इज्जत अच्छी लगती है उसको इज्जत दे दें, जिसको तारीफ अच्छी लगती है उसकी थोड़ी तारीफ कर दें। अल्लाह के नबी सल्लम ने क्या एहसास दिया, आपने फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में घुस जाए, या अपना दरवाजा अंदर से बंद कर ले, या मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए, उसे अमान है। ये एक ऑनर थी। और उसके बाद अल्लाह ने कितना काम लिया उनसे। अल्लाह के नबी का मक्का में दाखिला होता है, मुशरिकीन तेजी से अपने घरों और मस्जिद हराम की तरफ भागे, और मक्का बगैर किसी खून रेजी के फतह हो गया। और जब अल्लाह के नबी सल्लम बैतुल्लाह में तशरीफ लाए, उस वक्त आपकी जुबान पर क्या खूबसूरत कलमात थे, वकुल जा अल हक व ज़हक अल बातिल इन अल बातिल कान ज़हूका। और ऐलान कर दो के हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही वाला है। बनी इसराइल 81, दुआ करिए ये पुकार हम भी सुने, आज भी इसी की जरूरत है। अब अल्लाह के नबी के सामने 2 चॉइसेस थी, सबको जेलों में डाल दो और टॉर्चर सेलों में ले जाओ। नहीं, आपने मक्का वालों से क्या कहा, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम। यसरब और तसरीब का एक ही रूट है, आज तुम पर कोई सरजिश नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। कितना सब्र करना पड़ा ये जुमला सुनने के लिए। इस तरह बैतुल्ला और मक्का के इर्द गिर्द मौजूद बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया गया। इस रोज आपने लोगों से इस्लाम पर बैत ली और ये क्लाइमेक्स था, मक्का फतह हो गया। दिल किनके धड़क रहे थे? मदीना वालों के, आपके? क्या अल्लाह के नबी तो चले जाएंगे, रीजन खत्म हो गई ना मक्का से दूर रहने की। वो जो लम्हे हैं ना, अब सीरत पड़े तो अब रोएंगे, क्या पता नहीं अल्लाह के नबी किधर जाते हैं। और अल्लाह के नबी की जुबान से जो जुमले थे वो क्या थे? मेरा जीना और मेरा मरना इंसान के साथ। आज तक वो वादा पूरा हो रहा है। यहाँ आकर अल्लाह के नबी के जसद की बड़ी फीलिंग आती है ना। आप लोग मस्जिद नबी में जाते हैं तो फील करते हैं? दिल नहीं करता बोलने को वहां जाकर। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल मक्का तो फतह हो गया, लेकिन मदीना का मुकाम कम नहीं हुआ। उसके बाद गजवे हुनैन, बस अब दो गजवे रह गए एंड पे, काम तो हो गया। अब बस छोटे छोटे दूसरे मामला थे, बाहर की दुनिया के रास्ते हमवार होने थे। शवाल 8 हिजरी में ये गजवा होता है, ये वाहद गजवा है जिसमें सहाबा को अपनी कसरत का मान हो गया था। सूरह तौबा में आता है, इजा जबत कुम कसरतु कुम, अल्लाह ने उसी दिन झटका लगा दिया। असल में कैस ईलान के कबीले का बहुत बड़े लश्कर के साथ मुसलमानों पर हमले का फैसला था। अल्लाह के नबी सल्लम 12,000 के लश्कर के साथ रवाना होते हैं। इब्तदा दुश्मन के अचानक हमले से मुसलमान पसपा हुए, ये बिल्कुल लिख ले अपनी, आपको अच्छा लगेगा अगर आप कहीं बताते हैं। ओहद से ऑपोजिट है, ओहद में शुरू में फतह बाद में शिकस्त, हुनैन में शुरू में शिकस्त बाद में फतह। और अल्लाह के नबी सल्लम ने फिर दुआ फरमाई और हजरत अब्बास को हिदायत की कि सहाबा को पुकारे। अल्लाह ताला ने अनदेखा लश्कर उतारा, मुसलमानों ने भी पलटकर हमला किया और इस तरह से धुआंधार जंग के बाद दुश्मन भाग निकला, यानी फतह फिर भी इसमें हुई मुसलमानों को। अगला गजबा सन 8 हिजरी में, गजबा ताए शवाल का महीना 8 हिजरी। दुश्मन 1 साल की खुराक का इंतजाम करके किला बंद हो गया। अल्लाह के नबी ने कई दिन के मुहासरे के बाद नौफल बिन मुआविया के मशवरे पर कूच का ऐलान किया। आपने जाते हुए इनकी हिदायत की दुआ की, ये तड़प रखिए। इस्लाम की दुश्मनी काफिर से नहीं है, कुफर से है। आप कुफर दूर कर दें तो फैखवानकुम फिल दीन, फिर वो आपके भाई हैं। उसके बाद ही सेकंड लास्ट ईयर ऑफ दी नबी सल्लम की जिंदगी सन 9 हिजरी, इसके वाकयात देखें तो उसमें उमरे जेराना, अल्लाह के नबी का एक उमरा जेराना के रास्ते से हुआ, मुहर्रम 9 हिजरी में हुआ। और फिर उसके बाद वो हुआ जिससे बड़ी जंग, पूरे कुरान में जो मेंशन है जंगों में वो नहीं, कौन सी जंग? जो हुई नहीं, जिसकी नौबत ही नहीं आई, गजवा तबूक। रजब का महीना 9 हिजरी, खड़ी फसलें तैयार, सारे साल का फल, मुसलमानों को रूमियों से टकराव की तैयारी का हुक्म। अल्लाह के नबी को सिर्फ खबरें मिली थी, हमला नहीं हुआ था, कि ये रूमी जो है ना, ये बॉर्डर्स पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा आप खुलेआम हम आ रहे हैं तुम्हारी तरफ, ये जरूरत चाहिए होती है। इस जंग के लिए हर सहाबी ने अपनी बसात के मुताबिक सदके दिए। दावत दूंगी सूरह तौबा में से गजवे तबुक के सब पढ़ ले या सुन ले। अल्लाह कहते तुम्हें क्या हो गया है, जब तुम्हें अल्लाह के रस्तों में बुलाया जाता है तो तुम्हारे कदम मन मन के हो जाते हैं, तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह के नबी के साथ 30,000 का लश्कर रवाना हुआ। लंबा सफर था, सख्त गर्मी का मौसम था, सवारी और खाने की किल्लत थी। रूमियों को अल्लाह के नबी सल्लम की तबूक आमद की खबर मिली, इनके हौसले टूटे और मुकाबले की हिम्मत न हुई। अल्लाह के नबी ने 20 दिन वहां क्याम फरमाया, लेकिन एक जंग की नौबत ना आई। बस जहां ये कह देती हूँ कि ये वो जंग थी, 18 लोग 18 बारी बारी एक सवारी पे सवार होते और फिर उनकी बारी आती, यानी 17 लोग पैदल चलते फिर 18वें की बारी आती। सवारियां नहीं थी, एक खजूर मिलती, एक खजूर, सारा दिन उसको चूसते रहते चूसते रहते। किसी ने कहा कि उसे एक खजूर से क्या होता था, कहा ये उस दिन पता चला जब वो भी ना रहे। ऊंटों के पेट होजरी के अंदर का पानी पिया। हमें दीन कैसे समझ आया, हमारा तो पेट खाली नहीं होने पड़ता तो और खाना आ जाता। यहाँ आती हूँ ना तो एक चीज आप सबके नाते से कहना चाहूंगी, डोंट वेस्ट द फूड। ये जो बड़े होटल्स होते हैं ना, उसमें रहने का जो एक सबसे बड़ा मुझे ड्रॉबैक लगता है, मुझे भी और आपके सर को भी, बिल्कुल हम कंफर्टेबल नहीं होते। वो सुबह का नाश्ता बफे और जो खाना जाया होता है, और मैं फकीरों की तरह यकीन करें खाना इकट्ठा कर कर के, मेरा दिल करता है एक एक टेबल पे जाके कहते हैं कि ये लोगों की अपने साथ ले जाओ, बाहर किसी मांगते को दे दो, जितना मर्जी खा ले, जाया नहीं करेंगे, फिकेगा नहीं, क्योंकि ये दीन बड़ी मुश्किलों से आया है। और बहुत खाने खाकर फिर आंखें भी मोटी हो जाती हैं। तो ये थी नबी सल्लम की मदनी जिंदगी, और इसमें से भी खास तौर पे आपके गजबात। अगर गजबात पर एक नजर डाल लें, 8 साल की मुद्दत में आपके गजबात में कत्ल होने वाले सारे मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की तादाद मजमुई तौर पर 1,000 है। आज एक दिन में इससे ज्यादा मर रहे हैं। आपने इन गजबात के जरिए दौरे जाहिलियत में होने वाली जंगों के जालिमाना कवायद का खात्मा किया और पूरे जजीरे अरब और इसके अतराफ में अमन और अमान कायम किया। ऐसी जंगें लड़े ना आज भी लोग तो पूरी दुनिया में अमन आ जाएगा। और जंगें तो खत्म हुई, लेकिन दीन के रिचुअल्स में से सबसे कह लीजिए ऊपर जो आता है, और वो है हज। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के जरिए सन 9 हिजरी में हज करवाया गया। हजरत अबू बकर को अमीरे हज बनाया गया। 10 ज़िलहज को अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने मुनादी करा दी कि इस साल के बाद अब कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता, ना कोई नंगा आदमी बैतुल्लाह का तवाफ कर सकता है, क्योंकि उससे पहले नेकेडली भी हम तवाफ करते थे। सूरह आराफ में इसकी डिटेल्स है। बहरहाल ये ऐलाने बरात था, सूरह तौबा में इसकी डिटेल्स है। और फिर वो वक्त आ गया जिसको आप क्या कहते हैं, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वरअइतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहमदि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। एक वो वक्त था कि जब एक उम्र मुसलमान हुए थे और मक्का की पहाड़ियां अल्लाह अकबर से गूंज उठी थी, सबा एक एक बंदा गिनते थे। और फिर क्या हुआ, यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, वफूद की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। फतेह मक्का के बाद बहुत सारे वफद आए। अल्लाह के नबी सल्लम करीमाना अखलाक के साथ इनका इस्तकबाल करते। ये वफूद बदुओं में दीन को फैलाने का जरिया बने। तो याद रखिए, बहुत कुर्बानियों के बाद फिर बरकत आती है। हम Day 1 पे मजमे जाते हैं, कितने लोग आते हैं, कितने सुनते हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, सब छोड़ दीजिए, इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में काम करें। और उसके बाद हज्जतुल विदा सन 10 हिजरी, अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया, हज किरान था वो। हज के दिन आपने एक जामे खुतबा दिया और गुमराही से बचने के लिए कुरान और सुन्नत को थामने का हुक्म दिया। तरक तुफीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमसकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूलिही। अल्लाह मुझे आपको इसी मनहज पे रखे कि कुरान और सुन्नत को थाम लीजिए। और जो खुतबा था उसके अख्तिताम पे फिर ये आयते, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया। Maida 3 है। अल्लाह आपको मुझे इस इस्लाम पे कायम रखे, बिदात को, इजाफों को, कमियों पेशियों को निकाल दें, बिल्कुल प्योर दीन लीजिए। अल्लाह आपको मुझे इसका जरिया बना दें। एक काम जिसके बाद फिर बस अल्लाह के नबी इस दुनिया से कूच करते हैं, और वो क्या है, सरिया उसामा बिन जैद। अपनी जिंदगी में अपने मुंह बोले बेटे के बेटे को आपने लश्कर का अमीर बनाया। रबीउल अव्वल का महीना था, 11 हिजरी। आपने उसामा बिन जैद को 700 फौजियों के साथ फलस्तीनी सरजमीन की तरफ रवाना किया। अल्लाह के नबी की बीमारी की खबर सुनकर ये लश्कर जर्फ के मुकाम से आगे ना बढ़ा। बाद में ये लश्कर अबू बकर के अहदे खिलाफत की पहली फौजी मुहिम बना, और बाद में फिर अबू बकर ने भेजा इनको। लोगों ने कहा, एक बच्चा है, उसामा तो छोटा था। कहा, नहीं, जिसको अल्लाह के नबी ने बड़ा बनाया उसको मैं नहीं पीछे करूंगा। और उसके बाद सबसे सेंटिमेंटल वक्त रफीक आला की जाने आपका सफर। सफर के आखिर में अल्लाह के नबी की बीमारी की इब्तदा हुई। आखिरी दिनों में आपने हजरत आयशा के हुजरे में रहना पसंद फरमाया। अल्लाह के नबी मर्ज की शिद्दत के बावजूद खुद नमाज पढ़ाते रहे, लेकिन जब मर्ज की शिद्दत बहुत बढ़ी तो अबू बकर सिद्दीक को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। आपकी जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक ने 17 नमाजें पढ़ाई, और आप इस हालत में भी मुख्तलिफ नसीहतें करते रहे। किस चीज़ की दलील थी? खिलाफत अबू बकर की। जिंदगी में पता लग जाता है कि बाद में कौन आगे आएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बनी बहुत तकलीफ की थी। नजा की हालत में भी आपने मिसवाक करना पसंद फरमाया, और आप क्या फरमा रहे थे? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौती सकरात। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मौत के वक्त तो सख्तियां हैं। और आखिरी अल्फाज, मा लजीना नवल्लाहु मिनन नबीजीन वस्सिद्दीकीन वश्शहदा वश्शहदा वस्सालिहीना अल्लाहुम्मा अग्फिर ली वरहमनी वल्हिकनी बिर्रफीक लाला अल्लाहुम्मा रफीक लाला। इन अम्बिया सिद्दीकीन शुहदा और सालिहीन के साथ जिन्हें तूने इनाम से नवाजा, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पे रहम फरमा और मुझे रफीक आला में पहुंचा दे। ए अल्लाह रफीक आला। आखिरी फिक्रा 3 बार दोहराया और आपकी रूह परवास कर गई। सोमवार का दिन था, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, और हिजरत का ये 11वां साल था, और इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 63 साल की थी। और इस तरह से दुनिया से वो शख्स गया जिसको लोगों ने कहा था मैन खुशोकदार। अल्लाह हमें अपने प्यारे नबी की कदर की तौफीक अता फरमाए। तो मदनी दौर हिजरत से शुरू हुआ और नबी के दुनिया से जाने के साथ पूरा हुआ। हम रोज एक दुआ करते हैं, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, इसको नोट कर लें, यही है इनाम वालों का रास्ता। अल्लाह आपको मुझे पहले सालेहीन बनाए, उससे ऊपर बढ़ा कर अल्लाह में शुहदा में शामिल करें, उससे ऊपर बढ़कर अल्लाह में सिद्दीकीन में शामिल करें। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।